हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ई स्पेस पॉडकास्ट चैनल। और आज का इस एपिसोड है बेसिकली बुक रिव्यू है, बुक का समरी है। वो बुक का नाम है वेल्थ ऑफ द नेशन बाय एडम स्मिथ। सो एडम स्मिथ ने अपने लाइफ में सिर्फ दो बुक्स लिखे और उसमें से एक बुक है वेल्थ ऑफ द नेशन। सो ये बेसिकली अभी के जो इकोनॉमिस्ट है उनका कहना ये है कि अगर आपको मैक्रो इकोनॉमी के बारे में समझना है कोई कंट्री का, और मीन्स वर्ल्ड का मैक्रो इकोनॉमी के बारे में समझना है, सो उनका कहना ये है कि अगर आप सिर्फ ये एक बुक भी पढ़ेंगे ना, आपको काफ़ी है। बस आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कोई कंट्री का मैक्रो इकोनॉमी के बारे में जानने के लिए, फंडामेंटल जानने के लिए, और एग्जैक्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसा वर्क करता है, उसके अंदर का इंसाइट्स कैसे। सो आपको सिर्फ ये एक बुक पढ़ने की देरी है अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स जानना है तो, ऐसा जो एक्सपर्ट्स है करंटली उनका कहना है। और इस बुक में एडम स्मिथ ने ओवरऑल फोर पॉइंट्स फ्रेमवर्क के बारे में बात की है उन्होंने। सो वो फ्रेमवर्क्स को हम इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डाल के हम देखिए कि एज अ इंडिया इकोनॉमिकली कहाँ पे स्टैंड करता है, और कौन से पॉइंट्स में इंडिया लैग कर रहा है, और कौन से पॉइंट्स में इंडिया आगे है दूसरे कंट्री से। सो पहला पॉइंट है पॉपुलेशन। सो एडम स्मिथ का कहना है कि कोई भी कंट्री को एज ए इकोनॉमिकली ग्रो होना है, सो उसका मेन थिंग है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन कम हो सो कंट्री कभी इकोनॉमिकली ग्रो नहीं हो सकती है। और वो ये भी कहे कि कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो मीन्स यंग होनी चाहिए, ना कि वो एज ए चाइना कैसे होनी चाहिए, उनका मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिटायर्ड है, मीन्स मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का एज मोर देन 50 प्लस है। और इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ है, लाइक 130 करोड़ है, उसमें से जो 40% जो पॉपुलेशन है लाइक 50 करोड़ हो जाते हैं उनका एज 16 ईयर्स से बिलो है, और इंडिया का जो एवरेज एज है वो 25 ईयर्स है। तो 25 ईयर्स 50% हो जाते हैं, और जो 16 ईयर्स से बिलो जो 50 करोड़ बच्चे हैं वो 40% हो जाते हैं, और बचा सिर्फ 10% बचा है। वो जो 10% है उन लोग रिटायर्ड पॉपुलेशन है। ऐसा ये नंबर आप दुनिया में कोई भी कंट्री को पकड़ लीजिए और देख लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंडिया का इतना अच्छा एवरेज एज है 25, और बिलो एवरेज एज 16 ईयर्स से बिलो 50 करोड़ बच्चे, मीन्स ये बहुत अच्छा साइन है एक इंडिया को कि वो फ्यूचर में उसका पोटेंशियल बहुत है एज इकोनॉमिकली ग्रो करने का। और एडम स्मिथ कहते हैं कि जो फर्टिलिटी रेट होना चाहिए एक कंट्री का, मीन्स एक कपल जो साथ में आते हैं तो उनका फर्टिलिटी रेट होना चाहिए 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में 2.1 है, मीन्स एक कपल जब साथ में आते हैं तो उनके 3 बच्चे हो ही रहे, क्योंकि वो थोड़ा ओवर पॉपुलेशन बढ़ाने का कंट्री में चांसेस है। बट ठीक है, बट बिकॉज बहुत बच्चे यंग है और एवरेज एज भी बहुत यंग है सो उतना चलेगा, बट एज अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 2.1 जो रेशियो है वो ओवर पॉपुलेट कर सकती है कंट्री को। और एवरेज एज जो यूएसए का वो 38 है, और एवरेज एज चाइना का 38 प्लस है। सो ये इतना अच्छा साइन नहीं है जो ये दो कंट्रीज है उनको एज अ पॉपुलेशन जो पॉइंट में रख के देखे जाए तो, मीन्स वो इतने अच्छे नहीं वो पॉइंट में, वो अभी भी लैक खा रहे हैं। और चाइना का बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उन लोग लाइक ओल्ड एज में उन लोग, और यूएसए का भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स अभी अब बढ़ रहे ओल्ड एज की तरफ। और अभी हम आते सेकेंड पॉइंट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एग्जैक्टली ये वर्ड एडम स्मिथ जी ने अपने बुक में यूज़ किया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो इसका मतलब बेसिकली होता है कि क्या जो पॉपुलेशन है उन लोग के पास, उन लोग इतने विलफुल है क्या, उन लोग इतने विलिंगली है क्या अपना पैसे स्पेंड करने में। सो ये पॉइंट से भी देखा जाए तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सो इंडिया बहुत विलिंगली उन लोग पैसा स्पेंड करते हैं। बिकॉज आपको समझना है तो कैसे, सो आप देखिए कि लोन्स, बिकॉज इंडियन जो इंडिविजुअल्स है इंडिया में जो पॉपुलेशन है उन लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि लोन्स लेना, लोन से घर लेना, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इन लोग ज़्यादा ये चीज़ पर डिपेंड है। बट जो ये लोन का जो फंड है, सो ये अभी के लिए तो ठीक है, बट आफ्टर 20-40 ईयर्स ये 110% कुछ ना कुछ इश्यूज रेज करेगा ही करेगा ये। ऑल दो इंडिया जो कंट्री है ना बहुत गरीब कंट्री में से एक आता है, बिकॉज इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,000 है, लाइक ये हो जाता है 1.5 लाख। अगर वही आप चाइना का देखे तो पर कैपिटा इनकम कितना है, वो $11,000 है, एंड यूएसए का पर कैपिटा इनकम $30,000 है। सो ये इंडिया बहुत पीछे है पर कैपिटा इनकम में। इसके लिए इंडिया अमंग द पुअरेस्ट कंट्रीज में से इंडिया आती है। बट ऑल दो इंडिया एक पुअरेस्ट कंट्रीज में से आती है, बट इंडिया के पास जो इच्छा है स्पेंड करने की, पैसा और चीज़ें खरीदने की, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉइंट में भी इंडिया बहुत आगे है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में, और पॉपुलेशन में तो इंडिया ऑब्वियसली आगे है ही है। सो अब आते हैं थर्ड पॉइंट, एंटरप्रेन्योर। सो एडम स्मिथ कहते हैं कि अगर कंट्री को इकोनॉमिकली सक्सेसफुल होना है तो कंट्री में इनफ एंटरप्रेन्योर्स होना चाहिए। सो इंडिया में सपोज अभी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा बूम है, स्टार्टअप बूम। सब बोल रहे हैं मुझे अपना स्टार्टअप करना है, ये करना है, वो करना है। बट ये तो अभी आया स्टार्टअप बूम, बट इंडिया देखा जाए तो पहले से मीन्स बहुत सारे बिजनेसमैन इंडिया में हैं, इंडिया से आए दूसरे कंट्रीज में गए अपना बिजनेस सेटअप करके, और अभी जो ये बूम आया है स्टार्टअप इंडिया करके। सो ये भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है एंटरप्रेन्योर्स को एडुकेट करने में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अवेयरनेस लाने में। सो इसके लिए इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है। सो ये जो थर्ड पॉइंट है एंटरप्रेन्योर, सो इसमें भी इंडिया बहुत आगे है। इंडिया शॉर्टेज नहीं है एंटरप्रेन्योर्स में, और जो आज का डेट में आप देखा जाए तो और एंटरप्रेन्योर्स का जो नंबर्स रहते हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टार्टअप। जो यंग बच्चे हैं उनको भी अपना बिजनेस करना है, अपना स्टार्टअप लाना है, और देखा जाए तो जो अभी का सिचुएशन है, अभी का जो डेट है, सो उसमें अभी तक 21 यूनिकॉर्न्स है इंडिया में। यूनिकॉर्न्स मीन बेसिकली होते हैं जो कंपनी का वैल्यूएशन मोर देन $1 बिलियन होता है, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 7,500 करोड़ होता है। सो अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, और ये फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट है। सो वो है इनोवेशन। सो वो कहते हैं कि कंट्री में इनफ इनोवेशन होना चाहिए अगर कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो होना है। सो और एक 4 साल पहले जो गूगल के चेयरमैन थे वो इंडिया आए थे। सो उन्होंने एक बात कहे थे अपनी स्पीच में, वो बोले कि ना जो नेक्स्ट गूगल है ना वो इंडिया से आएगी। बट ऑल दो जो इंडिया है ना वो इनोवेशन में बहुत लैक करता है। इंडिया इनोवेशन कर सकती है और करते भी है। इंडिया बेसिकली रीजनल इनोवेशन करती है, उन लोग ग्लोबल इनोवेशन नहीं करती है। रीजनल इनोवेशन लाइक कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, वैसा काइंड ऑफ इनोवेशन करती है। ग्लोबल इनोवेशन लाइक गूगल एक काइंड ऑफ इनोवेशन ही है, अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट काइंड ऑफ, ऐसा कोई इनोवेशन इंडिया नहीं अब तक कर पाए। होप्स ऑफ फ्यूचर में करे। और अब तक इंडिया का कोई एक बड़ा इनोवेशन नहीं आया जो ग्लोबली पूरा स्प्रेड हुआ। और बिकॉज ऐसा देखा जाए तो यूएसए का जो कितने सारे स्टार्टअप्स है, जो बिजनेस है, जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, उन लोग बिजनेस में ग्रो होकर पूरे दुनिया में फेमस है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, एप्पल हो गया। बट इंडिया से अब तक कोई ऐसा कोई इनोवेशन, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन अब तक नहीं हुआ है। सो होप सो आगे फ्यूचर में हो। अगर आप इंडिया के इकोनॉमी को डिवाइड करें, लाइक आप देखिए कि इंडिया का जो इकोनॉमी मीन्स डिवाइड किए तो कौन से सेक्टर से आता है, वो वैसे सब देखिए तो 65% ऑफ जो इंडिया का इकोनॉमी है वो सर्विस है, और 15% एग्रीकल्चर है, एंड 20% इंडस्ट्रीज है। लाइक कोई भी कंट्री नहीं है अब तक जिनका जो सर्विस का जो सेक्टर है वो 65% कंट्रीब्यूट करता है इंडियन जो कंट्री के इकोनॉमी में। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इंडिया एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बनने के फ्यूचर में आके बनेगा, नहीं अभी भी है बहुत कंट्रीज से आके, बिकॉज कोई भी कंट्री का परसेंटेज इतना 65% नहीं है सर्विस सेक्टर में। सो गाइस आपको ये एपिसोड पसंद आया था तो अपने आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन गाइस, बाय टिल द नेक्स्ट एपिसोड।